Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. Well, I'm Lalima Aneja Dang and with me is my co-anchor Nikhil Kumar.
नमस्कार मार्केट मंथ में आज के अंक में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। इस कार्यक्रम में आपके लिए देश और दुनिया की चुनी हुई आर्थिक कारोबारी और शेयर बाजार से जुड़ी हुई खबरें लेकर हम हाजिर हैं और इन तमाम खबरों पर हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
गुड इवनिंग आप दोनों को।
और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ में लालिमा।
थैंक यू निखिल। डोमेस्टिक बेंचमार्क इंडिसेस हिट देयर रिकॉर्ड हाइज। सेंसेक्स क्लोजेस एट 81,868। Nifty closes at 25,011. India's fiscal deficit declines in April-June quarter, says Ministry of Finance data. And UPI transactions surge 35% year-on-year, says National Payment Corporation of India data.
घरेलू बेंचमार्क सूचकांक अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे। सेंसेक्स 81,868 और निफ्टी 25,011 पर बंद। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल जून तिमाही में भारत का राजकोषीय घाटा कम हुआ और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के आंकड़ों के अनुसार यूपीआई लेन देन में साल दर साल 35% की बढ़ोतरी हुई। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी पर नजर डालें तो सितंबर में फेड द्वारा ब्याज दरों में संभावित कटौती की उम्मीद के चलते घरेलू शेयर बाजार सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज सत्र के दौरान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 126 अंक की बढ़त के साथ 0.15% बढ़कर 81,868 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 60 अंक की वृद्धि यानी कि 0.24% ऊपर उठकर 25,011 पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 209 कंपनियां 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंची जबकि 27 अपने निचले स्तर पर रहीं। बीएसई के व्यापक बाजार में मिड कैप सूचकांक 0.8% नीचे रहा, वहीं स्मॉल कैप में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई।
Another stocks in detail. Sensex and Nifty hit their record highs today, driven by the expectation of a possible Fed interest cut in September. The BSE Sensex added 126 points or 0.15% to close at 81,868. NSE Nifty added 60 points or 0.29% to close at 25,011. Nifty crossed 25,000 points for the first time. In NSE, 209 companies hit their 52-week high, 27 hit their 52-week low. In the broader market at the BSE, the mid-cap index was down by 0.8%, small-cap index fell 0.7%. 15 out of 30 companies registered gains in the Sensex index. The top gainers today were Power Grid, more than 3.5%, NTPC 1.8% and HDFC Bank nearly 1.5%. Conversely, the major laggards were Mahindra & Mahindra 2.7%, Tata Steel 1.4% and Bajaj Finserv 1.2%. In sectoral indices at the BSE, 7 out of 20 sectors logged gains. Top gainers were utilities, more than 2%, power, nearly 0.9%, energy, 8%. Conversely, the major laggards were realty 1.7%, capital goods nearly 1.2%, industrials 1%, and the overall market breadth at the BSE was negative. Out of 4,048 companies, shares of 1,577 companies advanced and 2,383 declined and 88 remained unchanged. Rupee?
रुपए पे नजर डालें तो अमरीकी डॉलर की मांग और कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण रुपया आज अमरीकी डॉलर के मुकाबले 5 पैसा कमजोर होकर 83.73 रूपये के स्तर पर बंद हुआ। सिद्धार्थ जी, एक बार फिर से कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाजार की जो चाल है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले शुरूआत में तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा।
नहीं, जो हम बढ़त का जो दौर है वो इस हफ्ते में, आई थिंक आज जो चौथा कारोबारी दिन था और बढ़त जो है लगातार बनी हुई है। आज भी एक रिकॉर्ड सेंसेक्स ने बनाया, 82,000 का जो है तक गया, उसके बाद थोड़ा नीचे आया और इट इज क्लोज्ड अराउंड 81,800 समथिंग. सो आई थिंक ओवरऑल मार्केट ब्रेथ इज पॉजिटिव एंड आफ्टर द इलेक्शंस एंड नाउ आफ्टर द बजट, सो द क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ द फ्यूचर विजन फॉर नेक्स्ट 5 years, इट हैज ऑल्सो कम आउट इन डिटेल इन द बजट. गवर्नमेंट इज फोकस्ड ऑन एम्प्लॉयमेंट, हाउ टू स्टेबिलाईज द इंडियन इकोनॉमी, हाउ टू पुश एग्रीकल्चर, हाउ टू पुश मैन्युफैक्चरिंग, प्लस immediately if you will see the good corporate results are also pushing the market. Plus there is also, as we always talk, there is a trend in the younger generation to shift from bank deposits, a lot of people coming via SIP route, coming directly into Indian markets. Plus I think if you look at other bigger markets, for example US, so next 3-4 months US has elections, the US elections are looming. And so the kind of volatility or the uncertainty we would see in US, so Indian markets is the only place where you see this kind of macroeconomic stability in terms, especially political stability. Even if China, lot of people, we all look at China with lot of questions in our mind. So how things work in China, there's no doubt they are one of the biggest economies of the world, and they are one of the biggest manufacturing hubs. But still, there is some kind of lack of transparency in terms. So that transparency India gives. And we very clearly say, like even for our, we make some changes to our foreign investment for institutional investors in terms of their investments in the stock markets or in bond market. लेकिन हम एक बात बहुत clearly बोलते हैं कि आपने एक बार हमारे यहाँ निवेश किया है तो हम वो पैसा आपको ले जाने से रोकेंगे नहीं.
जी.
तो ये भी एक भरोसा है, होता है FIIs के लिए. तो आपने देखा होगा कि जब नए कुछ चेंजेस आए, जैसे कि हमने अपने कैपिटल गेन्स के स्ट्रक्चर में बहुत एक सर्टेनिटी स्टैंडर्डाइजेशन लाने की कोशिश की, तो उसके बाद एक तुरंत हमने देखा था कि मार्केट में एक गिरावट भी आई थी 2-3 दिन, लोगों ने पैसे FIIs ने भी विड्रॉ किए, थोड़ा कैपिटल गेन्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स दोनों में ही हमने इजाफा किया, टैक्स रेट बढ़ाया था. लेकिन जैसे जैसे लोगों को समझ में आया, 2-3 दिन निकले जब अधिकारियों ने, वित्त मंत्री ने खुद आगे बढ़कर जब उन प्रोविजंस को एक्सप्लेन किया इन डिटेल कि उसके पीछे इंटेंशन क्या है, तो आपने देखा फिर लोग भारतीय बाजार का रुख कर रहे हैं. और अब FIIs का एक इमीडिएट रोल हो सकता है, लेकिन जब वो निकलते हैं हिंदुस्तान की बाजार से, एक लेवल तक बाजार नीचे आती है, लेकिन उसके बाद आप देखते हैं कि तुरंत फिर बाइंग आने लगती है. तो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का, नॉट ओनली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स, एक आम आदमी का भी अब हिंदुस्तान की बाजार में बहुत बड़ा रोल, धीरे धीरे रोल बढ़ता जा रहा है. और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि रोज मार्केट हाइज, नए नए हाइज बना रही है.
इसमें अगर स्थानीय मुद्दों की हम बात करें तो मॉनसून का भी कोई रोल आपके अनुसार है इसमें, और अन्य जो चीजें, छोटी छोटी चीजें जैसे कि MSMEs को गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है लगातार, जहां तक उन्हें लोन देने की बात आती गवर्नमेंट आगे बढ़ करके तमाम योजनाएं बना रही है, ऐसे तबके जो पीछे होते हैं थोड़े से, अगर SC ST समुदाय की हम बात करते हैं, उनको बढ़ावा देना, महिलाओं को बढ़ावा देना, ये सारी चीजें भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं.
बिल्कुल ठीक कहा निखिल आपने. और मॉनसून इस समय पे, मॉनसून का रोल बहुत बड़ा होता है. जो आप रूरल डिमांड देख रहे हैं या आप फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की डिमांड देख रहे हैं, चाहे आप ऑटो की डिमांड देख रहे हैं, तो इसमें मॉनसून का इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है. क्योंकि अगर मॉनसून खराब होता है तो ऑब्वियसली ये बात बड़ी क्लियर हो जाती है कि ना कि केवल आपके फूड इन्फ्लेशन पे उसका जो इम्पैक्ट आता है, साथ ही साथ डिमांड को भी वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रेस करता है. तो वो बहुत बड़ा पॉजिटिव है. जैसा आपने कहा, जैसा मैंने अभी भी कहा कि मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल, चाहे आप हिंदुस्तान का फिस्कल डेफिसिट देखें, हमारी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी देखें, हमारे बजट के प्रोविजन, जो आपने MSME की बात की, हमने कई नए जो नट एंड बोल्ट होते हैं ना, जो छोटी छोटी कमियां कहीं हैं तो हम उनको कसने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो है वो भी इसको कहीं ना कहीं एक मजबूती प्रदान कर रहा है.
And the idea of the whole exercise is that I think that Siddharji, that we have tried to have fiscal consolidation below 4.5% for 2025-26, and the entire aim is to, of course, that the macro, once the macroeconomic stability is there, we'll have a better image and we'll have better investment. So it's kind of a vicious circle.
नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट लालिमा, बट यू सी दैट इज वाई पोस्ट कोविड, इट वॉज ड्यूरिंग कोविड दैट आर फिस्कल डेफिसिट हैड रीच्ड हैड क्रॉस 9%. सो एंड दैट वॉज द पॉइंट वेन वी अनाउंस दैट वी विल रीच, वी हैड अनाउंसड अ रोड मैप दैट वी विल गेट डाउन टू 4.5 बाय FY 2026, दैट इज द ईयर 25, फाइनेंशियल ईयर 25-26 एज यू सेड. सो नाउ एंड एवरी ईयर वी हैव नॉट ओनली मेट द टारगेट ऑफ फिस्कल डेफिसिट, वी हैव बेटर्ड इट. Even in the interim budget for the current financial year, we said we will have a, we had set a target of 5.1%, which in the budget, the full budget that FM finance minister announced some days back, we have now revised the target lower to the lower end to 4.9%, and we have also said now in the year 25-26 we will take it below 4%. So this also shows that no, and this is despite post COVID, government has been one of the biggest spenders. This year itself, the central government is making a capital expenditure, a record capital expenditure of 11 lakh crores. So it is trying to push the economy also at the same time, you know, meeting the fiscal consolidation plan, not you know, going away from that, and as well as you know, taking other measures in terms of pushing manufacturing, pushing no, the doing welfare, social welfare schemes in a big way,
exactly.
Rural housing, no, be it for agriculture, how to improve agriculture production, better agriculture, plus the commodities where we are short, oil seeds, pulses, we are taking a special, no, we are putting in special emphasis. So I think overall the idea is to go for an holistic and the holistic approach in terms of development as well as you know, reaching out to the weaker sections of the society. So I think that is the reason why you see, and even inflation, if I would say food inflation is something a little bit, something which is still you know, troubling us. But I think by the second half of this current financial year, that should also be within that band of 4%.
It must have been a very tightrope walk for the government, because on the one hand, as you said, we are committed to social schemes like 80 crore people being given free rations for 5 years. On the other hand, we have now almost zero subsidy on kerosene. And then we have now, interestingly, we have grown from about 30 million taxpayers a decade ago to about 82 million taxpayers now. So it's a bit of a tightrope walk, almost like managing the budget of a home. This is a much bigger home as a country, to see where to cut and where to use a social scheme and where to increase employment through CSR this time, as it happened in the budget, to promote corporates to spend the CSR on employment schemes.
No, Lalima, you are absolutely right. See, if you look at, since you talked about this subsidy on fertilizer alone, we were spending it. The last 2 years, we were around 2 lakh crores. Somehow, the prices have eased in the international market because we import a big part of it. So this year, that part is coming down to something about 1.65 trillion rupees. So plus the agriculture, we give free food to 80 crore people. So that is about 2 lakh 10,000 crores. So we have a huge social security, plus we give PM Kisan the dole outs which go every 3 months, 4 months,
6,000.
Yeah, every 4 months, right? Yeah. So that is another 60,000 crores. Then we have MNREGA, as social security, yes. So there is huge line of social security measures you will see. Then this we have started, as you said, on these employment schemes. We have started, we are allocating, at least to start, we have already allocated 10,000 crores plus 2,000 crores also for these corporates to, you know, for these kind of skilling our manpower, some 5 lakh skilling, 5 lakh youth to be skilled over the next 5 years.
Yeah.
So these are huge social responsibility. At the same time, meeting fiscal deficit target, garnering reviews. But yes, the positive is that a lot of formalization in GST has taken place. So we are getting good revenues through that. I think even income tax, we are seeing a upside there also. A lot of people now, more and more people are coming under the tax net. And the people who should have paid.
Yes.
And at the same time, a relief has also been given to people at the lower strata.
Right.
So I think it's, yes, you are right, a tight balance. But for last 10 years, we have seen that there has been, they've stayed on course.
So that's September mein Fed dwara byaj daron mein sambhavit katauti ki ummeed ki ja rahi, sambhavnaye bahut hi sakaratmak nazar aa rahi, aur bazaar bhi is khabar se kafi prabhavit hua hai. Bahut zyada dur ki baat to nahi, ek sawa mahine ki baat hai jisme hum ye dekhenge ki is tarah ke badlav ho rahe hain. Vaishvik asar to iska hoga hi hoga. Aap bhartiya bazaar par kis tarah ki expectations dekhte hain?
नहीं, बड़ा सीधा है। अगर फेड रिजर्व ये कह रहा है कि वहां इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं या घटेंगे, बिकॉज उनको लग रहा है कि उन्होंने अपने इम्प्लॉयमेंट और जो महंगाई दर जो उन्होंने दो जो उनके मेन एम थे, तो उनको लग रहा है कि उनको जो रिजल्ट सही जो रिजल्ट हैं, जो उन्होंने स्टेप्स लिए, जो कदम उठाए, उनको मिल रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनको सफलता मिल रही है महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट घटाने। इसी वजह से उन्होंने शायद जेरम पॉवेल ने कल ये आशा व्यक्त की है कि उनको लगता है कि सितंबर वाले फेड मीटिंग के बाद कुछ वो ब्याज दरों में जो है कमी आएगी या कटौती आएगी। तो मुझे लगता है और इंडियन मार्केट्स अट्रैक्टिव बनेंगे, अगर वहां इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो थोड़ा वहां से निवेशक और ऐसी मार्केट में आना चाहेगा जहां उसको अच्छे इंटरेस्ट रेट्स मिल रहे हैं, ना केवल आपको बॉन्ड्स में बल्कि ऑल्सो इन दी शेयर मार्केट।
अभी इसमें एक चीज और भी देखी जाए, जहां पर हम मार्केट की जब बात करते हैं तो पैसा ज्यादा से ज्यादा मार्केट में हो, खासतौर पे इंडियन मार्केट, इंडियन जो इन्वेस्टर्स हैं उन पर अगर बेस्ड हो, जब हम एफआईएस की बात ना करें, तो आपको क्या लगता है कि हमारा मार्केट इतना कैपेबल प्रेजेंटली है या नहीं?
नहीं देखिए निखिल, आज की डेट में हम लोग एक जो हम लोग रहते हैं वो मतलब जो कहते हैं ना कपल्ड है, मतलब हम एक इंटरनेशनलाइजेशन बहुत जरूरी है और वो हो चुका है आपकी मार्केट का, आपकी इकोनॉमी का। तो दुनिया में ये सोचना कि आपकी मार्केट केवल आपके डिपेंडेंस पे रहेगी वो भी सही नहीं है। एफआईआई रहेंगे और रहना भी चाहिए। जितना आपको ब्रॉड बेस्ड होगा इन्वेस्टर और मार्केट, उतना उसको स्टेबिलिटी मिलेगी। हाँ, ये एक अच्छी बात है कि पहले क्या होता था, एफआईआई का इतना हमारी मार्केट की इतनी डिपेंडेंस थी उनके ऊपर कि जब वो निकलते थे तो मार्केट सीधे सीधे कई बार क्रैश होती थी, गिरती थी बहुत तेजी। अब वो जो स्टेबिलिटी है, वो हमारा जो रिटेल इन्वेस्टर है, वो जो नई जनरेशन है, उसके जो इन्वेस्टमेंट के पैटर्न में जो बदलाव आ रहा है, जो वो लोग बहुत तेजी से लोग मार्केट की तरफ आ रहे हैं, तो वो जो है एक अच्छे संकेत है। और वो किसी भी मतलब मार्केट जितना ज्यादा वो होगी, ब्रॉड बेस्ड होगी, उतना स्टेबल होगी, उतना अच्छा होगा, उतना ही ज्यादा लोगों में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट भी होगी।
थोड़ा सा पीछे जाएं तो बजट को अगर एनालाइज करें तो उसमें शायद इस बात को जरूर नोटिस किया गया कि इंडियन इन्वेस्टर्स लगातार बढ़ रहे हैं, उनकी जो रिस्क लेने की कैपेसिटी है वो भी बढ़ रही है, और वो सिर्फ शेयर मार्केट में पैसा लगाने से भी कहीं आगे बढ़ रहे हैं। खासतौर पर जो ऑप्शन और फ्यूचर्स की हम बात करते हैं, इसमें भी आंकड़ों में बढ़ोतरी देखी गई है। जो भी ये सारी चीजें हैं इंडियन मार्केट को स्टेबिलिटी और भी ज्यादा दे रही हैं, शायद इसीलिए इन चीजों को इसमें इन्वॉल्व भी किया गया।
नहीं, आप निखिल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है फ्यूचर ऑप्शन एक ऐसी कैटेगरी है जो कि जिसमें रिस्क बहुत, रिस्क रिवॉर्ड दोनों हाई है। तो मैं ये जरूर बोलूंगा कि और कई बार क्या होता है जब रिटेल इन्वेस्टर्स हम लोग ये सुन आप मतलब ये किससे बहुत ज्यादा प्रचलित हैं, जब भी आप देखेंगे कि जब रिटेल इन्वेस्टर जल्दीबाजी करते हैं, ज्यादा मार्केट में ना ज्यादा पैसा कमाना, कम समय में कमाना, तो कई बार दे एंड अप लूजिंग मनी। तो मुझे लगता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस इज नॉट अ वेरी सेफ इन्वेस्ट, मतलब इज नॉट अ वेरी सेफ प्लेस फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर समबडी हुज अ रिटेल इन्वेस्टर हुज जस्ट स्टार्टिंग। तो ये एक, और आप देखेंगे जब भी आप इन्वेस्ट भी करते हैं तो सेबी की जब भी आप अपना डीमैट खोलेंगे तो एक गाइडलाइन भी आती है कि इसमें नो मेजोरिटी ऑफ द पीपल एंड अप लूजिंग मनी इन फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो मुझे लगता है वो एक थोड़ा सा रिस्क एरिया, और इसीलिए सेबी अभी कुछ नए कदम उठाने वाला है कि कैसे उस मार्केट को भी थोड़ा और ज्यादा रेगुलेट और ज्यादा उसको जो है ये कोशिश करी जाए कि थोड़ी उसकी सेफ्टी जो है वो बेटर हो। हाँ बिल्कुल, तो मुझे लगता है वो नहीं, बट हाँ रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी मैं कहूंगा, जैसे आज मार्केट में हमने देखा है कि जो हमारे मीडियम और शॉर्ट टर्म इंडिसेस दोनों गिरे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूएशन, ओवर हीटिंग दिख रही होगी, जो अर्निंग प्राइस अर्निंग रेशियोज हैं वो दे डोंट जस्टिफाई दी प्राइस दैट द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट। तो मैं बार बार ये बोलते हैं और ये हम सबके लिए है कि आप जिस भी स्टॉक में जब भी खरीद रहे हैं, भाई कंपनी को बढ़िया से पढ़ लें, या किसी मतलब ऐसे व्यक्ति के साथ जाएं जो फाइनेंशियली मार्केट्स में आपको बेहतर तरीके से इन्वेस्ट करा सकें, जो इस काम को करते हों, या तो आप उनके माध्यम से आएं, एसआईपी के थ्रू आएं, मैनेजमेंट को बढ़िया से स्टडी करें, कंपनी के नेचर को पढ़ें, कंपनी की हिस्ट्री क्या रही है, आउटलुक क्या है उस सेक्टर का। तो आई थिंक वन नीड्स टू बी केयरफुल विद हिज मनी।
All right, let's move on. The data released by the Ministry of Finance yesterday showed that the center's fiscal deficit declined to 8.1% of the full year estimate in the first quarter of the current financial year compared with the corresponding quarter of the previous year. The increase in tax collections and the payment of higher surplus by the RBI to the government of 2.11 lakh crore rupees aided to restrict the fiscal deficit, which stood at 1.36 lakh crore rupees at the end of June reads the data. On the revenue aspect, the data reveals that revenue receipts were higher at 8.3 lakh crore rupees, or 26.5% of the full year's target. Further, figures show that tax revenue was 21% of the full year estimate compared with 18.6% the previous year. In all, government has spent 20% of its total expenditure of 48.2 lakh crore rupees budgeted for the current fiscal. In the Union Budget 2024-25, fiscal deficit was fixed at 4.9%, which was 5.1% in 2023-24. Almost the same thing as we were discussing, Siddharth, about the fiscal deficit containment by the government. A tightrope walk, but nevertheless at it successfully.
Yeah, Lalima, and probably in April-June quarter, I would say more... We this is not something which is coming as a surprise, because I think we were going through the our general elections, so that is the time when we see the government expenditure also on the lower side. Code of conduct is there. Yeah, new projects cannot be started. Plus there is generally a kind of a go slow in part, because the new government is yet to come in. So they and especially in a year when we were electing a new government for 5 years, so we wait for the new programs, new policies, new announcements. So those kind of allocations have to be done in a fresh manner. Reallocation has to happen, and we have seen a lot of new initiatives have been taken in the budget. So all that kind of reallocation happens, and that also leads to some bit of lower spending. But yes, nonetheless, still the spending is there, and notwithstanding all that, still government for last 10 years has been on course of fiscal consolidation. So that's not something which is coming as a surprise. We should give them credit for that.
आगे बढ़ते हैं. एशियाई शेयर बाजार के पांच प्रमुख सूचकांकों में से चार आज घाटे में रहे. जापान के निक्केई में 2.49% की भारी गिरावट देखी गई. सिंगापुर के स्ट्रीट टाइम्स में 1.04% की कमजोरी दर्ज की गई. हांगकांग का हैंगसेंग और चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.20% से अधिक फिसल गए. वहीं दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.25% के लाभ में रहा. तीन में से दो प्रमुख यूरोपीय शेयर बाजार आज लाल निशान के साथ कारोबार कर रहे थे. समाचार मिलने तक फ्रांस की कैक और जर्मनी का डेक्स लगभग 0.70% से अधिक टूटा, और लंदन के फुटसी 100 में 0.23% की बढ़त देखी गई. सिद्धार्थ, एशियाई बाजारों की अगर हम बात करें तो जापान के मार्केट में आजकल काफी कुछ बदलाव बड़े पैमाने पर हमें देखने को मिल रहा है. अभी जापान के निक्केई में 2.49% की भारी गिरावट देखी गई, जो कि एक बड़ा आंकड़ा है जापान के मार्केट के हिसाब से. कई सारे मार्केट्स को लीड करते हैं.
नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और शायद ये कुछ उस आप ये जो अभी आप कह रहे थे कि जो इंडियन मार्केट्स की तरफ लोगों का रुझान है, तो शायद जो इन्वेस्टर है वो भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टर माइंडसेट, इन्वेस्टर उनका जो नो द वे ऑफ स्पेंडिंग और वो एलोकेशन जो करते हैं कंट्री वाइज, सो आई थिंक दैट ऑल्सो मे बी चेंजिंग, एंड दे ऑल्सो टेक अ नो लॉन्गर फॉरवर्ड लुकिंग इम्प्रेशन ऑन दी कंट्रीज आउटलुक. सो मे बी दैट ऑल्सो नॉट विद स्टैंडिंग दैट, मैं ये नहीं मानूंगा कि जापान किसी भी तरह से उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क है. हाँ, बट जरूर मतलब एक बात जरूर है कि निवेशक भी, चाहे वो विदेशी निवेशक हो चाहे वो घरेलू निवेशक है, वो अपने प्रॉफिट की मैक्सिमाइजेशन जरूर देख रहा होगा. तो शायद अगर उनको कहीं लगता है कि जापान से ज्यादा रिटर्न इंडियन मार्केट्स में है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी कंजम्पशन मार्केट है. आप कितना भी कुछ कर दें तो हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा एक एडवांटेज है कि हम अपने आप बहुत बड़ी कंजम्पशन मार्केट है. तो एक सर्टन रेट ऑफ ग्रोथ, सर्टन रेट ऑफ कंजम्पशन आपको हिंदुस्तान में हमेशा मिलेगा, और यही रीजन, और उसके साथ साथ पॉलिटिकल मैक्रो इकोनॉमी स्टेबिलिटी, नई सरकार आने के बाद जो इतनी भी अनिश्चितताएं थे, चुनाव सब आपके पीछे हैं, तो वो भी एक रीजन है कि लोग शायद अपने जो पोर्टफोलियोज हैं उनको रीअसाइन कर रहे होंगे.
इन लाइटर वेन द काइंड ऑफ डायवर्सिटी वी सी इन इंडिया, यू नो, जैसे कहीं ना हर महीने कुछ ना कुछ फेस्टिवल हो ही रहा होता है, तो उथल पुथल इकोनॉमिक एक्सचेंज हैपन्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी हैपन्स बाय वे ऑफ अ फेस्टिवल. सो देर इज नो वे यू कैन नेवर गेट इन टू यू नो बियॉन्ड सर्टन बिलो अ सर्टन लेवल. इट इज सर्टन लाइटर वेन.
ठीक कह रहे हैं लालिमा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. मतलब कुछ ना कोई कारण आ जाता है स्पेंडिंग करने का. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं.
कुछ बहुत है, बहुत कारण है. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन एंड हैव अ लुक एट द यूएस मार्केट्स. द S&P 500 एंड नैस्डैक स्कोर द बिगेस्ट डेली परसेंटेज गेन्स सिंस फरवरी 2022 एंड द डाउ जोन्स रोज ऑन वेंसडे एज चिप स्टॉक्स रैलीड एंड फेडरल रिजर्व केप्ट यूएस इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज्ड व्हाइल सिग्नलिंग पॉसिबल ईजिंग इन सेप्टेम्बर इफ इन्फ्लेशन कूल्स. नैस्डैक जम्प्ड मोर देन 2.6%, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज अप बाय 0.24% एंड द S&P 500 गेन्ड मोर देन 1.5%.
और आगे बढ़ते हैं. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार UPI आधारित लेन देन में बढ़ोतरी हुई है. यह आंकड़ा 20,64,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है और UPI लेन देन में साल दर साल 35% की वृद्धि आई है. आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में कुल UPI लेन देन की संख्या माह दर माह लगभग 4% बढ़कर 14 बिलियन हो गई और औसत दैनिक लेन देन की मात्रा 4 करोड़ से अधिक थी. UPI अब हर महीने 60 लाख नए उपयोगकर्ताओं को जोड़ रहा है, जिससे UPI पर रूपे क्रेडिट कार्ड और विदेशों में इसकी शुरुआत से प्रोत्साहन मिला है. भारतीय रिजर्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देश अपने मजबूत डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, एक जीवंत फिनटेक इकोसिस्टम और एक आचरणशील नीति वातावरण के दम पर एक अग्रणी देश के रूप में उभर रहा है. सिद्धार्थ, इन आंकड़ों के क्या मायने हैं हमारी इकोनॉमी के लिए?
नहीं, एक तो देखिए कि फॉर्मलाइजेशन हो रहा है. अगर आप UPI ट्रांजैक्शन हो रहा है तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर कर रहा है. आपका वो जो है फॉर्मलाइजेशन हो रहा है, उसका बैंक अकाउंट है तभी वो कर पा रहा है. बैंक अकाउंट एक दूसरे के बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट ट्रांसफर, प्लस कैश का लेन देन कम हो रहा है, फॉर्मलाइजेशन हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये भी पता लगेगा कि किसकी कितनी आमदनी है. प्लस आपका UPI एक, मुझे लगता है दुनिया के लिए इस समय हम एक उदाहरण बन के उभरे हैं. वी आर लीडर्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, स्पेशली UPI. और आप देख रहे होंगे कि हमारे कई देशों के साथ इसको लेके भी जो है समझौते हुए. अभी प्रधानमंत्री गए थे एक दो देश, मुझे याद आता है शायद दुबई, फ्रांस, हमने वहां पे भी इनको इंट्रोड्यूस किया. और अभी RBI, ये जो NPCI, इन लोगों की बातचीत चल रही है. कई देश हमसे इस टेक्नोलॉजी को मांग रहे हैं, आप कैसे करते हैं. तो हम लोग वर्ल्ड लीडर्स हैं और ये कभी इस तरह की अपेक्षा नहीं थी. क्योंकि आप दुनिया में जाएंगे, अभी अमेरिका में भी आपको इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, अमेरिका यूरोप में भी अभी बहुत ज्यादा मतलब तादाद में अभी भी वो कैश ट्रांसफर या कैश लेन देन है. इंडिया दैट वे इज अ पाइनियर, हम पाइनियर हैं, लीडर्स हैं UPI का. और यही जो आपको सर्च दे, और अब मुझे लगता है आज की डेट में जो आप बात कर रहे हैं ना निखिल, ऐसा हो गया कि अगर आपके पास UPI नहीं है तो शायद आप कभी मुश्किल में पड़ सकते हैं. आजकल आपके पास कैश ना हो तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास UPI या आपके पास कोई ऐप नहीं है जिसके थ्रू आप पेमेंट कर पाए, वो सरल होता जा रहा है. लोगों को लेन देन में वो अब पसंद आ रहा है, उनको आदत पड़ रही है.
भी बढ़ रही है,
ट्रांसपेरेंसी तो बिल्कुल बढ़ेगी इससे. मतलब फॉर्मलाइजेशन होगा वो तो होगा ही होगा, और एक आसानी भी हो रही है. पहले आप नोट मतलब चेंज ढूंढिए, तो वो सब दिक्कतें अब खत्म हो जा रही है. किसी को 11 रुपए दे रहे हैं, 13 रुपए दे रहे हैं, जो भी करना. और अभी तो RBI भी अपना एक पायलट कर रहा है, डिजिटल रूपी जो वो कर रहे हैं, वो पायलट चला रहे हैं, उसको धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं.
Does that also mean the coming up of a rupee means, are we going to, is the dollar being slightly undermined? Is there any undercurrent of that?
Nahin, I wouldn't say that dollar is under, dollar still continues to be the dominant currency, international currency. I don't think, yes, but UPI is one of the modes through which we are making our presence felt. Plus, India is also trying to promote its own rupee as for trade. So we are also asking countries, wherever possible, we are also working on that. Internationalization of rupee.
Right.
We are doing that. But that would is a work in progress. It will take time. It would happen, but it will take time.
All right, let's take a look at the oil prices. Brent and WTI crude trading nearly 0.5% up in global crude market today. Brent crude increased 0.53% to $81.27 per barrel. The U.S. West Texas Intermediate WTI up by 0.5% to $78.30 per barrel when reports last came in.
और सर्राफा बाजार में सोना आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है. शाम 6:40 पर भारत में 24 कैरेट सोना 0.85% बढ़कर 70,300 रूपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा था. वहीं चांदी की बात करें तो 0.82% ऊपर चढ़कर 84,530 रूपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही थी. सिद्धार्थ जी, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हमसे चर्चा करने करने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आप दोनों को भी धन्यवाद।
एंड फ्रेंड्स, बिफोर वी वाइंड अप, हियर इज अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। डोमेस्टिक बेंचमार्क इंडिसेस हिट देयर रिकॉर्ड हाइज, सेंसेक्स क्लोजेस एट 81,868, निफ्टी क्लोजेस एट 25,011. इंडियाज फिस्कल डेफिसिट डिक्लाइंस इन अप्रैल जून क्वार्टर, सेज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डेटा. And UPI transactions surged 35% year on year, says National Payment Corporation of India data. Well, that's all we have for you, friends, in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalema Anija Dang, and my co-anchor Nikhil Kumar, signing off. Namaskar.
Namaskar.